విష్ణుపాద పరమహంస పరిబృజకాచార్య అష్టోత్తర సుదాసిమత్ హిస్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శిల ప్రభుపాదకి గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం కి సమావేశ భక్త వృందకి నితాయ గౌర సన్మాన. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తదో జయముదీరయే నష్ట భయేష భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతే ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైస్తికీ. అమా శ్రీమద్ భాగవతం క్యాంటో 9 చాప్టర్ 18 వర్స్ నెంబర్ 5. శ్రీరాజువాచ బ్రహ్మర్షే భగవాన్ కావ్య శత్రుభంధుశ్చ నాహుతః రాజ్ఞా విప్రో కస్మాత్ వివాహ ప్రతిలోమకైః శ్రీరాజవాచ బ్రహ్మర్షే భగవాన్ కావ్య శత్ర బంధుశ్చ నాహుతః రాజన్యా విత్రయో కస్మాత్ వివాహ ప్రతిలోమకః. శ్రీరాజవాచ బ్రహ్మర్షే భగవాన్ కావ్య తత్ర బంధుశ్చ నాహుతః రాజన్యా విప్రయో కస్మాత్ వివాహ ప్రతిలోమకః. శ్రీరాజవాచ సంవత్సరి భగవాన్ చత్ర బంధుశ్చ నాహుతః రాజన్యా విప్రయో కస్మాత్ వివాహ ప్రతిలోమకః. శ్రీరాజోవాచ బ్రహ్మర్షే భగవాన్ కావ్య తత్ర బంధుశ్చ నాహుతః రాజన్యా విప్రయో కస్మాత్ వివాహ ప్రతిలోమకః. మాతాజీ శ్రీరాజోవాచ బ్రహ్మర్షి భగవాన్ కావ్య తత్ర బంధుశ్చ నాహుతః రాజన్యా విప్రో కస్మాత్ వివాహ ప్రతిలోమకః. श्री राजवासा
and translations of third, fourth, fifth.
Sri Rajavacha,
Sri Rajavacha,
Maharaj Parikshit ne jigyasa ki.
Maharaj Parikshit ne jigyasa ki.
Brahmarishi,
Brahmarishi,
Brahmanon mein shreshth.
Brahmanon mein shreshth.
Bhagavan,
Atyant Shaktishali.
Kavya,
Kavya,
Shukracharya,
Shukracharya.
क्षत्रबंधु
क्षत्रियों की जाति से संबंधित राजा याति राजन्य विप्रयो
ब्राह्मण
तथा क्षत्रिय का
कस्मात्
कैसे
विवाह
प्रतिलोमकः
क्योंकि यजाति के पिता नहुष ने इंद्र की पत्नी सती को छेड़ा था, जिसने अगर तथा अन्य ब्राह्मणों से शिकायत की थी, तो इन ब्राह्मणों ने नहुष को साप दिया कि वह स्वर्ग से कर अजगर बन जाए। ययाति राजा बना। चौथे नंबर दो, राजा ययाति के चार भाई थे, जिन्हें उसने चारों दिशाओं में शासन चलाने की अनुमति दे दी। ययाति ने शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से एवं विश्वकर्मा की पुत्री कनिष्ठा के साथ अपना विवाह किया और वह सारी पृथ्वी पर शासन करने लगा। आज के श्लोक में महाराज परीक्षित ने कहा, शुक्राचार्य अत्यंत शक्तिशाली ब्राह्मण थे और महाराज ययाति क्षत्रिय थे। अतएव मैं यह जानने का इच्छुक हूँ कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के भी यह प्रतिलोम विवाह कैसे संपन्न हुआ। तात्पर्य, वैदिक पद्धति के अनुसार परस्पर क्षत्रियों में या परस्पर ब्राह्मणों में विवाह होना सर्वमान्य प्रथा है। यदि कभी विभिन्न वर्णों के भी विवाह होते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, अनुलोम तथा प्रतिलोम। एक ब्राह्मण तथा क्षत्रिय पुत्री के मध्य विवाह की अनुमति है, यह अनुलोम है। किंतु एक क्षत्रिय तथा ब्राह्मण की पुत्री के मध्य विवाह प्रतिलोम है और सामान्यतया इसकी अनुमति नहीं है। इसलिए महाराज परीक्षित जानने को उत्सुक थे कि शुक्राचार्य जैसे शक्तिशाली ब्राह्मण ने प्रतिलोम विवाह किस प्रकार स्वीकार किया। वे असामान्य विवाह के कारण को जानने के लिए उत्सुक थे।
धन्यवाद प्रभु। ओम अज्ञान तिम्रानंदस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिचनासहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। बारी हिज होलीनेस राधानाथ महाराज बता रहे थे कि ये जो कहानी है श्रीमद् भागवतम के अंदर इस पर्टिकुलर जगह पे जो ययाति राजा की कहानी है वो काफ़ी पॉपुलर है स्पेशली ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर कि उनको पूरा शिक्षा देता है कि ये सब ययाति राजा के आगे जो भी आप कहानी सुनेंगे कि क्या होता है कैसे ये सब तो बताते हैं कि बहुत पॉपुलर और वेरी फेवरेट कहानी है। इधर हम इस चैप्टर में सुन रहे हैं कि राजा नाहुसा का छह बेटे थे उनका जो एल्डेस्ट बेटा यति तो उनको राज्य देने के लिए जब पूछा था उन्होंने मना कर दिया। तो क्यों मना किया उन्होंने? उनको लगा कि ये जो राज जो भी अपलेंस जितने भी ये सब हैं हाँ ये सब जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए ब्लॉक्स हैं आटंकाएं हैं तो उन्होंने मना कर दिया उसे। और ऊपर से हम सुनते हैं इधर सेकंड श्लोका के अंदर थर्ड के अंदर कि महाराज नहुसा को श्राप मिला क्योंकि उन्होंने इंद्र के पत्नी से गलत तरीके से व्यवहार किया था ये सब। और उसके बाद वो बने थे बड़ा पाइथन। ये सब सुनने से हमें कई बार भागवतम में ये सब कहानी सुनते हैं इतने बड़े बड़े लोग हैं हाँ बड़े बड़े राजा हैं और ऊपर के जो प्लैनेट्स में रहते हैं फिर भी इनका व्यवहार हमारे कुछ समझ में नहीं आता ऐसा कैसे हैं। हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम लोग पृथ्वी लोक में हैं और हमारे ऊपर के लोक में वो लोग हैं तो हमें अभी तक का ज्ञान है उसके ऊपर का कुछ नहीं। हमने पिछले जन्मों में क्या किया हा? तो हम हमेशा उनके नीचे रहेंगे। उनको क्रिटिसाइज करने का हमारा कोई हक नहीं रहता है। हमें तो ये समझना है अगर स्केल के अंदर देखा जाए वो हमेशा यहाँ पर रहेंगे हम लोग हमेशा नीचे हैं ठीक है। हमारे दृष्टि से हम उनको गलतियाँ कोशिश करते हैं निकालने के लिए कुछ समझ में नहीं आता हम लोगों को। तो हमें ये सब शिक्षा भागवत से मिलता है और आचार्यों से सीखना चाहिए सुनना चाहिए समझना चाहिए कि कैसे करते हैं ठीक है। इस दुनिया में ये जो पावर है अब यहाँ पर यति राजा ने तो फिर मना कर दिया है अब यहाँ पर सभी लोगों का हम लोगों का क्या है मेन चीज तो पावर। जहाँ पर भी पावर मिल जाता है उसके पीछे तो हम लोग भागते ही हैं कोई भी हो इट इज अ प्रेस्टीज का इश्यू होता है किसी को भी अगर हासिल करने के लिए भागते हैं हासिल करने के बाद क्या होता है उसको मेंटेन कैसे किया जाए उसको मेंटेन करने के लिए कृषि करते हैं हम लोग पूरा मेहनत इसी में चला जाता है हासिल करो हासिल करने के बाद मेंटेन करो। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होते हैं कर नहीं पाते हैं तो हम लोगों का स्वभाव जो है जो डीमंस का जो मॉन्स्टर्स का स्वभाव जैसा हो जाता है हम अपना स्वभाव का नहीं उसके साथ जो आपस में हमारे साथ जो जुड़े हैं उन सबका स्वभाव बदल देते हैं हमेशा। यहाँ पर इस पृथ्वी के अंदर हम लोगों का ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर हम राजा याति से देखते हैं कि उन्होंने पूरा मना कर दिया। आगे देखते हैं हम ये जो आज के श्लोक में जो है महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं कि यहाँ पर याति राजा जो है उन्होंने ब्राह्मण पत्नी ब्राह्मण के पुत्री से विवाह किया है तो ये कैसा है। यूजुअली जो कस्टम जो हैं वो ब्राह्मण ब्राह्मण से करते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय में होता है, नहीं तो ब्राह्मण क्षत्रिय से कर सकते हैं क्षत्रिय। यहाँ पर क्षत्रिय राजा जो हैं ब्राह्मण के पुत्री से कर रहे हैं वो यूजुअली अनुकूल नहीं है। तो महाराज परीक्षित इच्छुक हुए हैं कि ऐसे कैसे हुआ, क्या है। तो इस श्लोक में खाली ये बताया जा रहा है कि डेस्टिनी, हम लोग बहुत कुछ प्लान करते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, बट डेस्टिनी इज वन थिंग, डेस्टिनी इज विधि, डेस्टिनी इज भाग्य, भाग्य जो भाग्य में है उसको बहुत मुश्किल है बदलना है सब चीज। तो डेस्टिनी के बारे में बताते हैं इधर। जो इसमें महाराज परीक्षित पूछते हैं इतने जो शुक्राचार्य जो हैं इतने ऊंचे कोटि के ब्राह्मण हैं और महाराज ययाति जो हैं ऊंचे कोटि के क्षत्रिय हैं, उनके कुल में आगे भगवान कृष्ण आने वाले हैं, उनका जो वंश जो है इतना बड़ा है उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है तो ये कैसे संभव है, ये इसके बारे में पूछते हैं। तो ऐसे जैसे याति जैसे राजा भी हैं और ययाति जैसे राजा भी हैं, दोनों पूरा जो हमारे शास्त्रों में बताते हैं कि ये जो महाराज युधिष्ठिर हैं हम जानते हैं, महाराज परीक्षित खुद हैं और आज के कंटेम्परेरी के अंदर महाराज प्रताप रुद्र जो हैं ये सब राजऋषि हैं, जैसे याति टाइप के सेल्फ रिलायंस पीपल। तो हम लोग जो है इसमें जो मेन चीज है डेस्टिनी को कैसे बदलते हैं, डेस्टिनी को तो कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। नारद मुनि के देखिए, नारद मुनि जो है उनके मेड टर्न थे तो कहां से कहां पहुंच गए थे, उनके वो जो सेवा करने के बाद ऋषियों के उनका खाली एक ही आधार था मदर, उनका माँ का भी देहांत हो गया था और स्नेक बाइट से, उसमें भी क्या डेस्टिनी है देखिए। तो नारद मुनि ने उस टाइम पे भी उन्होंने उसको भगवान का मर्सी समझ के उन्होंने लिया फिर तो आगे बढ़े हैं। तो ऐसे जो हम लोगों को हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, हर एक चीज को हम भगवान का मर्सी भगवान का प्रसाद लेके आगे बढ़ते हैं तो फिर आराम से आगे बढ़ सकते हैं। ये भी देखा गया कि बड़े बड़े जो कृष्ण कॉन्शियस विद्वान हैं अगर उनको कोई तकलीफ आता है तो ये बोलते हैं यहाँ तक कि हम यशोदा मैया को बोलेंगे, उनको ये बोलते हैं कि उनके दिमाग में यह आता है कि हम यशोदा मैया को कंप्लेन करेंगे कि कृष्णा हमें ये सब तकलीफ देता, ये नहीं बोलते हैं कि हमें ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं, उनका कॉन्शियसनेस हमेशा ये रहता है। हाँ, उनसे ये सब सीखना है कि उनका कॉन्शियसनेस है कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं सर, ये बहुत जरूरी है। ये सब हमें कॉन्शियसनेस कैसे आता है सर, वेरी सिंपल, हम लोग यहाँ पर जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ये सब फॉलो कर रहे हैं ये सब क्या है, स्पिरिचुअल है क्या, ये सब स्पिरिचुअल नहीं है, मेटीरियल है, फिर भी क्या मतलब है। दिस आर कीपिंग अस इन द मोड ऑफ गुडनेस, शुद्ध शत्व में रख रहे हैं हमें, ये बहुत जरूरी है। हम वी आर द फॉलोअर्स ऑफ श्रील रूप गोस्वामी, अंशलोक रूप गोस्वामी ने तो सिंपल फॉर्मूला दिया है ये डिवोशनल सर्विस के लिए। उन्होंने क्या क्या जो अनुकूल है उसको, जो डिवोशनल सर्विस के लिए अनुकूल है उसको लीजिए, जो प्रतिकूल है उसको रिजेक्ट करिए, उसको मत लीजिए। ये सिंपल ये चीज कहा उन्होंने। तो ये डिवोशनल सर्विस को करने से हमें, जो प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि ये जो हमारा जो डेस्टिनी का है इसको बदलने का और इसको सहन करने का शक्ति मिलता है। ये जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करने से हम लोग शुद्ध सत्व में रहेंगे, शुद्ध सत्व के बाद ही हमें ऊपर जो ट्रांसेंडेंट, जो एक्चुअल प्योर डिवोशनल सर्विस जो है वो कर पाएंगे, नहीं तो उसका कोई नो स्कोप वो करने का। तो ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल, चैंटिंग, ये सब बहुत जरूरी है हमें, सब जो आचार्य लोगों ने कहा है। तो कई बार हम सुनते हैं कि ये प्योर डिवोशनल सर्विस क्या है, हा? अब श्रीमद् भागवत में हमें लिखा हुआ है कि 1-6 के अंदर, फर्स्ट कैंटो के अंदर, सवाय पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति यदोक्षजे, हाय तुकी अप्रति हता ये आत्मा सुप्रति देती। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है इसके अंदर, सीधा सीधा बताते हैं क्या धर्म क्या है, ह्यूमैनिटी का, हम लोगों का धर्म क्या है। हम लोगों का धर्म ये है कि वी हैव टू एंगेज इन द लविंग डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड। कैसे? अनमोटिवेटेड एंड इंटरप्टेड, ये दो, अहै सुखी अप्रतिहता, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, अहै सुखी अप्रतिहता। कैसे अनमोटिवेटेड एंड इंटरप्टेड? ये जो हमारे डेस्टिनी है ये आगे ये सब करने नहीं देता है, इसे ये ऊपर नीचे हमारे लिए हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस होता रहता है। तो उस जगह में भी हम लोग हाउ डू वी डू दिस अनमोटिवेटेड, एक तो अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड, कुछ भी हो हमें तो ये भगवान का सेवा में कुछ भी विघ्न नहीं रखना है, वो आगे बढ़ते रहना है सर। दैट इज व्हाट इज द रिकमेंडेड थिंग। एक राधानाथ महाराज जी बताते हैं एक भक्त के बारे में कहानी जो है, ये तो इट्स अ ट्रू स्टोरी। अभी जब इंथोलिनेथ राधानाथ महाराज जब इनिशियली वॉज नॉट इन द जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है उनके बारे में समझते नहीं थे, तो एक बार उन्होंने बहुत जगह घूम रहे थे, तो फिर जब इंडिया में ही वो भगवान शिव के भक्त थे उस समय, तो 1970s की बात है, तो ये वो जा रहे थे यहाँ एक जगह से अमरनाथ जा रहे थे यात्रा में, तो उनको मथुरा स्टेशन जब आने के बाद जो ट्रेन पूरा भरा हुआ था तो वो नीचे उतरे, उसके बाद उस पर चढ़ नहीं पाए, उनको जाना कहीं और, बट डेस्टिनी इज टेकन टू मथुरा। तब उनको ये भी नहीं पता था कि वो कौन सा स्टेशन है, और उनको ये भी नहीं पता था कृष्ण कौन है, उस समय की बात है। तब वो कह रहे थे कि, तब उन्होंने पूछा कि हम कहाँ पहुंचे हैं, बोलते हैं कि ये मथुरा है, ये भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, और आज जन्माष्टमी है, कृष्ण माष्टमी बोला, आज जन्माष्टमी है। सी द डेस्टिनी, सी वी हैव बोथ। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो उनको ले गए वहां से ब्रजवासी, उनको ले गए कि आज आप कृष्ण के जन्म स्थान में आए हैं, आज जन्माष्टमी है, और आइए हमारे आप अतिथि हैं, आके प्रसाद ग्रहण करिए। तो उनको ले गए, दर्शन करवाया, प्रसाद करवाया, ठीक है। उसके बाद उनका प्लान था कि चलो 3 दिन, हमने सुना कि वृंदावन जैसा भी जगह है, थोड़ा घूम लेते हैं, फिर मैं अमरनाथ चले जाते हैं। तो उन्होंने ये सोचा, थोड़ा फिर वृंदावन के लिए गए, तो वहां पर, तो वृंदावन में तो यह है कि बहुत सारे साधु हैं, वहां पर तो यही है कि साधु लोग परिक्रमा करते हैं, और हर एक अलग अलग मंदिरों का मधुकरी का टाइमिंग जो होता है, जैसे रोटी वगैरह प्रसाद बांधते हैं, तो वो जाके उस समय लेते हैं, उनका यही है। 3 दिन रुके थे, 3 दिन के बाद उनको, 3 दिन में ही उनको समझ में आ गया कि उनका जो परमानेंट वो चीज है वृंदावन ही है, वहीं रहना है और कहीं नहीं जाना उनको। सी द डेस्टिनी, वेयर ही वॉज गोइंग, कहां जाने के सोच रहे थे, कहां पहुंच गए थे। और दूसरा चीज ये पूछते थे, वो उनका हमेशा ये होता था कि जाके जहां पर भी सेक्रेट प्लेसेस में जाते थे, वो उनके जो नदी होते थे सेक्रेट नदी के पास जाके वहां पर नहा के उनका हमेशा वहीं सोते थे, और यहां पर यमुना को ढूंढ के यमुना के निकट सोते थे। तो कुछ दिन के बाद मैंने बाकी साधुओं के साथ दोस्ती किया, तो एक बार एक साधु ने कहा कि हम आपको ले जाते हैं एक बहुत शुद्ध जो भक्त से आपको मिलाते हैं, उससे पता चलता है कि आपको पता चलेगा कि ये भक्ति क्या है, क्या चीज है। ठीक है, तो वो साधु ले जाके ये जो राधा वल्लभ जो मंदिर है उस एरिया में से लेके गए, गलियों से लेते हुए गए एक छोटा सा घर में ले गए। तो महाराज को उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था किनके घर में ले जा रहे हैं, क्या दिखाने वाले। तो जैसे मन अंदर गए, जो हॉलवे के अंदर जो उसके अंदर वरंडा जो होते हैं ना, उसी के अंदर एक स्मॉल जो कबर्ड के अंदर, क्लोसेट कहते हैं कबर्ड के अंदर, हाँ, एक दो मूर्तियां और वहां पर एक पुजारी बैठे हुए थे, उनका नाम है घनश्याम। उन्होंने बोला साधु ने कि इनसे मिलिए, घनश्याम जी हैं। ठीक है, वो घनश्याम जी उस समय 80 साल के थे। तो महाराज बताते हैं कहानी क्या है कि एक घनश्याम जो भक्त हैं, ये जब 20 साल के थे, 19-20 साल के थे, उस समय अपने माता पिता के साथ व्रजमंडल में वृंदावन में आए थे। तो ही वॉज वेरी एजुकेटेड पर्सन, बहुत अंग्रेजी सब कुछ जानते थे। तो आने के बाद उनको मन में ये चेंज हो गया कि कुछ दिन के बाद कि उन्होंने अपने माता पिता को बोला कि हम यहीं रहेंगे कुछ दिन, आप लोग जाइए वापस। तो बाकी लोग चले गए लेकिन वो तो वहीं रह गए। तो माता पिताओं को कुछ उनको प्रॉब्लम हो गया, दर्द टॉप, फिर आगे वापस पूछने कि चलो अब चलो, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं चलेंगे अभी। तो उन्होंने डराया, जैसे एवरी पेरेंट्स जैसे डराते हैं, कुछ नहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा, और फ्रॉम नो नो इनहेरिटेंस फ्रॉम दी प्रॉपर्टी साइड एवरीथिंग। तो वो तो पूरा चार्ज कर चुके हैं ऑलरेडी घनश्याम से, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उनका काम क्या था वहां पर, डेली जो है यहाँ पर मधुकरी करना, अलग अलग मंदिरों में जाके प्रसाद लेना और बैठ के भगवान का नाम लेना। उनका क्या पूजनीय ड्यूटी है, वो तो वहां पर नीचे बैठ के यमुना के तट पे बैठ के एक अक्षर लिखते थे संस्कृत के अंदर, श्री राधा। पूरा सुबह से शाम तक उनका यही था, किसी का जपा करते थे और शाम को वो मिटा देते थे ताकि कोई ऊपर ना जाए। तो एक बारी जो शाम को उनको मिटा देते तो बहुत ज्यादा नीचे से शाइनिंग हुआ, देखा कि क्या है अंदर, अंदर नीचे का सोना कुछ समथिंग गोल्ड। तो उसको खुदाई करके निकाला तो फिर वहां पर शीशी राधा गोपीचंद वल्लभ का दोनों मूर्तियां थे, ये दोनों सेल्फ मैनिफेस्टेड स्वयं जो डीटीज मिले उनको। उन्होंने सोचा कि ये तो डेस्टिनी है, गेम ये हमारा डेस्टिनी है, ये मेरा यही है कि इनको मेरे को सेवा करना है। तो उनके पास फटे हुए कपड़े थे और कुछ नहीं, उन्होंने अपने वो जो पेड़ के नीचे वो दोनों डीटीज को रखा बस। उसके बाद से वो मधुकरी भी करना भी बंद कर दिए, क्योंकि वहां पर बैठ के सेवा करना, उनको चमरा करना उनका काम यही था। जो लोग आते जाते उनको थोड़ा सा प्रसाद देते थे, वही भगवान को देते थे, फिर वो खुद खाते थे। कुछ दिन के बाद कुछ लोगों ने देखा वहां पर कि ये इनका इतना भक्ति है तो इनको कुछ करते हैं। तो उन्होंने अपने घर बुलाया, ये जो हॉलवे में एक कबर्ड दिया, कबर्ड में बोला कि इसमें डीटीज रख के आप सेवा कर लीजिए। तो ये तब से लेके अभी तक 50-60 ईयर ये सेवा करते जा रहे हैं वहीं पर, और वहां से हिले नहीं, कहीं और गए नहीं। और उनका क्या, इस महाराज बताते हैं वेरी पेक्यूलियर मूड है उनका, उनका भाव है, क्या भाव है, जो भी वहां पर आते हैं, जो भी वहां पर आते हैं उनके दर्शन करने, वो ये बोलते हैं कि वो श्री श्री राधा गोपीजन वल्लभ के आदिति हैं और मैं उनका इनसिग्निफिकेंट सेवक हूँ, तो उनको उनके समान देखते हैं, उनके समान देख के उनका सेवा करते हैं। आप कौन थे यहाँ पर? ईश्वर ने राधानाथ महाराज, उस समय उनको कृष्णा के बारे में तीन चार दिन से कुछ पता चल रहा था कि क्या है, उनको कुछ भी नहीं पता। तो उनको ने रिसीव किया, उधर बिठाया, फिर उनको थोड़ा सा प्रसाद दिया, उसके बाद बोला आप रोज आइए। तो फिर रोज 9 बजे जाते थे, तो एक बार उन्होंने बोला आप एक बार 12 बजे आए, 9 बजे नहीं 12 बजे आए। तो 12 बजे गए अगले दिन, तो उन्होंने 3 रोटी दिया उनको, 3 रोटी खा लिए। तो ऐसे 3-4 दिन गए, 3-4 दिन के बाद जो शुरू में जो साधु जो उनको परिचय करवाया था, उन्होंने बोला कि ये जो घनश्याम प्रभु जो हैं, ये 4 दिन से भूखे हैं। बोलो क्यों भूखे हैं? तो महाराज ने पूछा क्यों भूखे हैं? उनको जो 3 रोटी जो मिलता था वो आपको देते देते, ठीक है, उनका पूरा दिन में वो 3 रोटी मिलता है, 3 जो घर है वहां पर, वो घर वाले एक एक रोटी देते थे, वो आपको दे दिया है तीनों, तो 4 दिन से वो भूखे हैं। तो महाराज को बहुत बुरा लगा, फिर वापस गए, बोला कि ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो कंचा प्रभु ने कहा आप क्या सोचते हैं, ये श्री मती राधा रानी का जगह है, इनके भंडार में कोई रोटी की कमी है? तो उनसे वो तो उनको कुछ भी ज्यादा नहीं ज्ञान था उस समय, तो उनसे आर्ग्यूमेंट में जो वार्तालाप के अंदर वो जीत नहीं पाए, फिर से उनको खिला दिया, बिठा के फिर से खिला दिया। तो 5वां दिन भी घनश्याम प्रभु भूखे। तो हमेशा वो ये सोचते हैं आप तो श्री श्री राधा गोपीचंद वल्लभ का अतिथि हैं, फ्रेंड हैं, मित्र हैं, हम तो उनके सेवक हैं, हमारा फर्ज है आपको सेवा करना। उसी से श्री राधा गोपीचंद वल्लभ जो हैं वो प्रसन्न होंगे, बाकी लोग प्रसन्न होंगे, ये हमारे लिए वो है। तो वो तो पूरा एक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपने अंदर से उनका मूड यही है। तो फिर महाराज ने क्या किया, अगले दिन 12 बजे नहीं गए कि नहीं जाएंगे, तो लेकिन 9 बजे तो गए एक दिन छोड़ के, तो इनके लिए वो रोटी जो है अगले दिन 12 बजे नहीं खाए, 9 बजे के लिए रखा हुआ है, ठीक है। फिर महाराज दिन में जाना बंद कर दिए थोड़ी देर, फिर थोड़ा शाम को जाने लगे, शाम को जाते थे। तो महाराज बताते हैं पूरा दिन इनका ये होता था कि कुछ ना कुछ, कभी भी उन्होंने ये नहीं देखा कि घनश्याम जी किसी आराम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं, कभी उनके लिए ड्रेसिंग कर रहे हैं, कभी कीर्तन कर रहे हैं, कभी उनको नहला रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं हमेशा। जब शाम को जाते हैं तो कीर्तन करके उनको सुलाते हैं, और ये जो मूर्तियां हैं ये तो फुल लाइफ साइज मूर्तियां हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। तो वो घनश्याम प्रभु जो हैं 80 साल के हैं, तो वो तो उनको नहीं सकते हैं। तो उन्होंने जब भी ये महाराज जाते थे उनसे रिक्वेस्ट करके उनको रात को सुलाते थे, तो उनको वेट करते थे महाराज कब आएंगे, कब सुलाते हैं ये, उनका इतना भाव होता था। इसे एक बार जो है एक स्वीट राइस मिला उनको उधर एक त्योहार के अंदर, राधाष्टमी वाले दिन स्वीट राइस दिया किसी भक्त ने आके, तो वो तभी महाराज के लिए वेट किए, महाराज पहुंचे तो उसके बाद वहां पर उनको भी बिठाया, बोला कि आज भगवान के लिए स्वीट राइस है, तो फिर आप बैठिए। तो श्रीमती राधा रानी, श्री गोपीचंद वल्लभ और महाराज तीनों को बिठा के उनका भाव है कि तीनों को कुछ मंत्र बोलते हुए महाराज बताते हैं, एक चम्मच श्री श्री गोपीचंद वल्लभ को, एक चम्मच श्री राधा रानी को, एक चम्मच महाराज को, उसी समय ऐसे खिलाते गए। तो महाराज इस समय एक वो बताते हैं कि वी शुड नॉट इमिटेट दैट, व्रजवासियों का जो भक्ति वी शुड नॉट इमिटेट, वी शुड टेक द प्रिंसिपल, उनका जो भाव लेना है लेकिन वो इमिटेट नहीं करना हम लोगों को, ठीक है, बहुत जरूरी है ये चीज, ठीक है। तो उनका भाव ये है कि उनका मूड ये है कि मैं तो सेवक हूं, जो भी आ रहे हैं, जो भी श्री राधा गोपीचंद वल्लभ को देखने आ रहे हैं वो उनके मित्र हैं, उनके बराबर के लोग हैं, तो उनको खुश रखना हमारे लिए, ये तो भगवान ने उनको भेजा इधर, उनका मूड क्या है, उन्होंने राधा गोपीचंद वल्लभ ने बुलाया उनको, वो आके उनको देख रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे बात हो रहा है, मेरा काम है दोनों को सेवा करना, उनका हमेशा ये मूड था। और सेवा कहां तक, अब जैसे रात को उनको सुनने के बाद महाराज वापस जाते थे, महाराज तो यूजुअली जो है यमुना के किनारे सोते थे, तो तब क्या कहा इन्होंने कि नहीं ये विंटर टाइम है तो आप यहीं सो जाइए। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद तो महाराज वहीं पर सो गए। तो वहां पर कुछ नहीं, हमेशा जमीन है, जमीन के अलावा उनके पास कोई कपड़ा नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने एक फटा हुआ एक कंबल दिया उनको महाराज को, तो वो ओढ़ के सो रहे थे। थोड़ी देर के बाद उनको आवाज शिवरिंग का आवाज सुनाई दिया, देखे कि फिर वह घनश्याम प्रभु साथ में सो रहे हैं और वो कांप रहे हैं सर्दी के लिए, तो और कंबल उन्होंने वापस किया, तो वापस नहीं लिए, बोला कि ये तो आप तो उनके दोस्त हैं और अतिथि हैं, ये तो हो ही नहीं सकता कि हम कंबल लेंगे आपसे, आपको पहनना। तो ये 5-6 बार पूरी रात ये एक्सचेंज होते अंबर, ठीक उनका ये भाव है। तो फाइनली महाराज वहां पर रात को सोए नहीं, चले गए अगले दिन से, उनका ये भाव रहता है, ऐसे भक्त लोग हैं। फाइनली महाराज एक बार उनसे बोला कि हम बरसाना जा रहे हैं, तो ये रोते हुए घनश्याम प्रभु ने कहा कि श्री श्री राधा रानी जी से हमारे प्रार्थना करना, हम भी बहुत इच्छुक हैं, बहुत सालों से वेट कर रहे हैं उनके दर्शन के लिए, ठीक है। जब गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए जा रहे हैं, ये जब महाराज ने ये बताया, उन्होंने कहा कि उनसे ये विनती करना कि हमारे भी मन में इच्छा है कि हम भी परिक्रमा हैं। महाराज बताते हैं घनश्याम जी जो 60 साल से वहीं पर मूर्ति के साथ सेवा कर रहे हैं, और वो जो हैं जो बताना और गोवर्धन परिक्रमा बाकी जो रेगुलरली कर रहे हैं उनसे ज्यादा वो देख रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, उनका ये लेवल है। तो वहीं खड़े हो गए, तो उनका घनश्याम जी का यही है कि हमारा सेवा ये है, हमारे लिए डेस्टिनी ये है कि ये भगवान ने हमारा सेवा दिया है, ये हमें करना है और कुछ नहीं करना है, मेरे को अब कुछ छोड़ के नहीं जा सकते हैं। उनका ये है, उनका डेली रूटीन और क्या है, एक ही टाइम वो वहां से निकलते थे, कब सुबह नहाने के टाइम पे यमुना के लिए जाते थे, यमुना में नहाने के बाद पूरा 7 साल पिछले 7 साल यही करते रहे, वहां से एक बाल्टी उठा के ला रहे थे। 80 साल के अंदर एक बाल्टी कैसे उठा के ला सकते हैं, हर 3 कदम करने के बाद उसको नीचे रखते थे, उसके बाद उठाते थे। एक बार महाराज ने देखा कि यह हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे को मदद करने दो, मैं तो खाली 20 साल का हूं, आई एम स्ट्रांग, मेरे को मदद करने दो। तो फिर 20 मिनट वार्तालाप होने के बाद घनश्याम जी रो पड़े, बोले कि मेरे से ये छोटा ये खाली ये सेवा होता है इस समय, और ये भी आप लेना चाहते हैं, रो पड़े। तो वो भी नहीं दिया उनको, उनका खाली ये मिनट, आप तो दोस्त हैं उनके, आप तो मेहमान हैं, तो आपको कैसे दिया जाए, नहीं ये मेरा सेवा है मेरे को करने दीजिए। फिर ये चलता रहा। फिर महाराज वो वीजा खत्म हो गया था, फिर वापस अमेरिका गए। तो फिर दोबारा जब 10 साल के बाद आए तो फिर वहां पर मिलने गए उनसे, तब वो पहचान लिए, उनको बोलते थे रतन कृष्णा, रतन जो महाराज को बुलाते थे उस समय, रतन रतन बुलाते थे, क्यों कि जो अर्जुना का नाम है उसे, तो वो बुलाते थे, तो उन्होंने पहचान लिया। तो 11 साल के बाद घनश्याम प्रभु ने उनको बुलाया कि रात को आइए, 11 साल से वो खड़े खड़े सो रहे हैं, उनको लेटा हुए सुलाना है, ठीक है। तो उनको बुला के फिर से रात को उन्होंने सुलाया है। तो वहां पर बताते हैं कि ये जो मंदिर है इट इज नॉट इन द रेगुलर जो परिक्रमा के उसमें नहीं है, और लोग ज्यादा लोग जानते नहीं है इसके बारे में, क्या इतने ऊंचे भक्त के बारे में और भक्ति यहाँ पर हो रहा है। तो महाराज छोटा इंसिडेंट बताते हैं कि इतने ऊंचे हैं। और कुछ महीनों के बाद जब महाराज दोबारा गए उधर, तब वो नहीं थे और ना श्री श्री राधा गोपी जी ने वल्लभ थे। चपा कि क्या हुआ, बोला कि एक ट्रस्ट ने एक मंदिर बनाया, वो लोग मूर्ति के लिए ढूंढ रहे थे, तो किसी ने बताया कि सेल्फ मैनिफेस्टेड मूर्तियां यहाँ पर हैं और पिछले 60-70 साल से उनका सेवा ही पुजारी कर रहे हैं, तो वहां से उन्होंने ले लिया। और घनश्याम प्रभु बहुत खुश हुए कि उनसे भी कोई अच्छा सेवा करने के लिए उनके लिए एक मंदिर बन गया और सेवा करने के लिए है। तो जब पूछा कि घनश्याम प्रभु जी कहाँ गए, तो वहां के लोगों ने बोला कि वो तो खाली वेट करते रहे कि कोई इनके लिए कोई छत मिल जाए, कोई मूर्ति मंदिर बन जाए, वो तो गोलोक पधार गए। तो उनका इससे हम क्या सीख रहे हैं, उनका तो खाली ये है कि वो भी आ रहे हैं उनको देखने के लिए, वो हैं उनके अतिथि हैं, वो दोस्त हैं, तो वो भाव है। जैसे हमारा हम इससे क्या क्या सीख सकते हैं, हम लोगों को यहां पर कौन लाया, प्रभुपाद जी के कोई ना कोई, हाँ कोई ना कोई प्रभुपाद जी के जो फॉलोअर हैं वही लेके आए। देयर इज ऑलवेज अ कनेक्शन, हम लोग यहां पर हैं तो हम लोगों का क्या करना है, क्या स्मूथ से करना है। इसमें थोड़ा सा वी कैन नॉट इमिटेट, लेकिन हमारे लिए ये थोड़ा सा भी ये मूड बन जाए कि मंदिर में देखेंगे कि कितने लोग नए लोग आते हैं, हाँ वो सब जो है अपने से नहीं आ रहे हैं, ये सब प्री अरेंज हैं, ये सब श्री राधा गिरिधारी के अरेंजमेंट हैं। तो मंदिर के लिए लोग आ रहे हैं, उनसे मिलने आ रहे हैं, उनका क्या रिश्ता है हमें नहीं समझ में आता है, हमें लेकिन उनका जो डोमेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस उसके अंदर जो है वो जागृत करना हमारा धर्म है। तो कैसे करेंगे, उनको देखभाल करना है। जैसे श्री राधा गिरिधारी को सेवा करते हैं उसी की तरह जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको उसी तरह सेवा करना है। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था कि वैष्णव कौन है, जब शुरू में लोगों ने पूछा कि वैष्णव वो है जो एक बार भी भगवान का नाम लेता है, और शिला प्रभुपाद ने एक बार भी आके उनका दर्शन कर लिया हो तो वो तो वैष्णव के बराबर हो गए, उनका सेवा तो उनके बराबर हमें करना है। तो वी हैव टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी कि कौन कौन वेट कर रहे हैं। हमें तो शिला प्रभुपाद ने तो आसान से इतना मंदिर बना दिया, इतना अट्रैक्टिव है, लोग आते हैं तो हम उसका वो नहीं उठा पा रहे हैं। हम लोग बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग पहले अंदर अपना, यहाँ जितने लोग आते हैं वी शुड रिसीव देम सो ग्रेटली, दे शुड से हम लोग गए श्री राधा गिरिधारी के मंदिर, वहां के भक्त लोग ऐसे हैं, ऐसे सेवा करते हैं, भगवान की तरह हम लोगों को भी देखते हैं, हम लोगों को वहां जाना है, वहीं रहना है, वहीं सेवा करना है, आगे सीखना है उनसे और सुनना है उनसे। ये एक दो जने से नहीं होगा, ये हम लोग जितने भी लोग हैं हम लोगों का ये मूड थोड़ा सा भी आ जाएगा तो अगर एक दूसरे को कभी भी हम लोग, क्योंकि हमें डेस्टिनी तो पता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर भी आपस में एसोसिएशन के साथ इस मूड पे रह के जितने भी भक्त लोग और जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर जिनके बारे जिनको ये भी नहीं पता है, हम लोगों को ये परिचय करवाना है कि शिला प्रभुपाद जी कौन है, तुलसी महारानी का क्या महत्व है, हाँ श्री श्री राधा गिरिधारी, ये लोगों को ये नहीं पता रहता है कि अल्टर में कौन कौन है। तो ये हमारा धर्म है, ये पता करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये हमारे रिक्वेस्ट है कि हम लोग एक साथ मिलके ये जो सेवा है जितने भी लोग आ रहे हैं आगे से, इसका एक प्लान बना के हम लोग उनको अच्छी तरह से रिसीव करके उनका सेवा किया जाए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो वहीं पर प्रभु जी। प्रभु जी जहाँ पर राधा वल्लभ का मंदिर एरिया है वहीं पर है, पास में मंदिर, मंदिर है, मंदिर बन गया तो उसके बाद श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।